प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं शारद वाणी जो 50वां अंक छपा है उसमें जिन जिन अंतरंग भक्तों ने श्री महाराज जी के समय के जो अंतरंग भक्त हैं उन्होंने श्री महाराज जी के विषय में अपने विचार दिए हैं, महादेवी तीर्थ के विषय में विचार दिए हैं, उनको पढ़ के सुनाने में मुझे आनंद मिलता है और मैं आशा करती हूँ कि आप भी वह सब सुनकर प्रसन्न होते होंगे जरूर। अब मैं आपको एक भक्त महिला के अनुभव अनुभूतियाँ जो उसने इस अंक में लिखी है सुनाने जा रही हूँ। लिखने वाली का नाम है इंदु शर्मा गुंतर। वे लिखती हैं, शारदा माँ सेवा संघ के सभी सदस्यों श्री माँ जी को शारद वाणी के 50वें अंक की बहुत बहुत बधाई हो। श्री महाराज जी की असीम अनुकंपा से ये पत्रिका अपने 50वें सोपान पर पहुंच चुकी है। श्री महाराज जी तथा श्री माँ जी का आशीर्वाद मुझ पर सदा से है। मेरा नाम इंदु शर्मा है तथा मैं भूंतर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म रायसेन जिला कुल्लू में हुआ। मैं जब चौथी कक्षा में पढ़ती थी तब मेरा परिचय श्री महादेवी तीर्थ से हुआ। मैंने जब अपनी माता जी से पूछा कि ये मंदिर में बाबा कौन है, ये बाबा जी कौन है, तो उन्होंने स्वामी जी क्या कर मुझे प्रणाम करने के लिए कहा। मैंने श्री माँ जी के बारे में प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी मौसी है, इन्होंने संन्यास ले लिया, अब ये मंदिर में ही रहती हैं। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई कि इस बिहड़ मन में ये कैसे रहती हैं। तब मुझे माता जी ने बताया कि इन्हें माँ जगदम्बा शक्ति देती है तथा साथ ही स्वामी जी महाराज भगवान स्वरूप हैं। इनका आशीर्वाद माता जी पर है। जो यहाँ आता है उसको माँ की शक्ति आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। अपनी माता जी के मुख से ये वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई और मुझे एक दैवीय शक्ति का अनुभव होने लगा। मैं नियमानुसार रविवार को अपनी माता जी के साथ तीर्थ में आने लगी। स्वामी जी ने मेरा नाम मधुबाला रखा। मुझे आज तक ये नहीं संभव समझ में आया कि श्री महाराज जी ने मेरा नाम इंदु बाला की जगह मधुबाला क्यों रखा। शायद इसलिए कि मधु मीठा होता है। मुझे शायद आशीर्वाद दिया होगा, शायद ही पक्का ही है कि तुम मधु की भांति रहना, जीवन में आगे बहुत कठोर कठोर समय आएंगे, बड़े कड़वे कड़वे अनुभव होंगे, लेकिन बेटा आप हमेशा मधु की भांति मीठे ही बने रहना। आज मुझे उनके ये शब्द मधु वाला शब्द बहुत याद आता है और मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे मधु वाला नाम ना दिया होता तो मैं अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को मधु के रूप में कैसे बदल देती। श्री महाराज जी ने जब मेरा नाम मधु वाला रखा तो उन्होंने मुझे भजन सुनाने के लिए भी कहा। मैंने माता की एक भेंट मेरी माता नु लगदी प्यारी चुन्नी गुलनारी रंग दी ये सुनाई। मुझे बचपन से ही भजन गाने भेंटे गाने का बड़ा शौक था और ये भगवान की देन है मुझ पर, मुझे गाने में आनंद आता है। उन्होंने श्री माँ जी से उन्होंने मतलब श्री महाराज जी ने माँ जी से कहा ये कन्या बाद में मंदिर के सानिध्य में रहेगी। उसमें तो मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई, परंतु अब उस वाक्य का वास्तविक तात्पर्य समझ पाई हूँ, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से श्री महादेव तीर्थ से जुड़ चुकी हूँ और ये जुड़ाव बहुत ही मजबूत व भावात्मक है। जो भजन स्वामी जी महाराज जी को सुनाया था उसके फलस्वरूप अब मैं स्वयं श्री महादेव तीर्थ श्री महाराज जी श्री मां जी से संबंधित भजन कविताएं आदि लिखने लगी हूँ। स्वामी जी ने कहा था कि हे कन्या, मंदिर के सानिध्य में रहेगी, तो ये बात भी सही निकली, क्योंकि मेरे गुरु जी व मेरे पति के गुरु जी श्री मां जी हैं। मां देवी तीर्थ में मैं आया करती थी, इस दौरान मैंने अपनी पढ़ाई बीए तक कर ली थी, शायद मेरी शादी भी हो गई। मेरे ससुराल वाले भी हर उत्सव में मंदिर आया करते थे। मुझे हिंदी साहित्य में गहरी रुचि है। ऐसे तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाइयों ने मुझे ड्राफ्टमैन की ट्रेनिंग करवाई थी। मैं आज एक अच्छे ओहदे पर होती, लेकिन ना जाने उसमें मेरी रुचि नहीं थी या मेरे भाग्य में नहीं था कि मैंने उस डिपार्टमेंट को छुआ भी नहीं, और उससे पहले ही मेरी शादी हो गई थी और ससुराल में मुझे सर्विस करने का समय भी नहीं मिला, इसलिए मैंने हिंदी एमए कर लिया। हिंदी एमए करके मैं एक छोटे स्कूल में बहन जी अध्यापिका लग गई, लेकिन हिंदी साहित्य में बहुत अधिक रुचि होने से तथा श्री श्री महाराज जी के आशीर्वाद से मैं हिंदी साहित्य एमए में अच्छे नंबरों में पास हुई और मैं एक बड़े स्कूल में हाई स्कूल में अध्यापिका लग गई। एक दिन मैं श्री महादेव तीर्थ में माँ सरस्वती के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी कि माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हिंदी साहित्य में एमए करूं तथा लेखने को भी शक्ति प्रदान करो। भावों के अतिरेक से मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस समय माँ की कृपा से ही एक सरस्वती वंदना अनजाने ही स्वयं सृजित होकर मेरे होंठों से निकल पड़ी, जो शारद वाणी में प्रकाशित हो चुकी है। एक बार आध्यात्मिक सत्र में श्री माँ जी ने सबको पेन बांटे। मुझे जो पेन मिला उस पर स्वामी जी की तस्वीर थी। मैंने श्रद्धा पूर्वक पेन को नमन किया और घर जाकर उस पेन से श्री महादेव तीर्थ पर भजन लिखने लगी। वह भजन इतनी द्रुत गति व भावों से लिखा गया व सुंदर अलंकारों बिंबों सहज शब्द गुफन से सज्जित हुआ कि मैं स्वयं नहीं समझ पा रही थी कि ये चमत्कार कैसे हुआ। जो ही वह भजन पूर्ण हुआ मैंने पेन को नमन करके कागज व पेन अपने पलंग के सिरहाने रख दिया और सो गई। सुबह उठकर देखा तो कागज तो वही था किंतु पेन का अता पता ना था। बहुत ढूंढा, घर में सबको पूछा, परंतु कोई पता नहीं चला। वास्तव में वह पेन स्वामी जी के आशीर्वाद से मुझे साहित्य सृजन की प्रेरणा व शक्ति दे गया। उसके बाद तो मैंने कविताएं व भजन लिखने शुरू कर दिए। इस प्रेरणा के बल पर मैंने पहली कविता लिखी, कुछ कह गया कोई, ये शारद वाणी में भी छप चुकी है। तत्पश्चात मैं शारद वाणी की पाठिका जो मेरी रिश्ते में बहन लगती है से जुड़ी। उनका नाम अल्पना सूद है। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम भी और अच्छा लिख सकती हो। वह स्वयं एक कवित्री है। उन्होंने मुझे आर्थर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल के अध्यक्ष श्री जयदेव शर्मा विद्रोही जी से मिलवाया तथा उनसे पहली ही मुलाकात में मैंने उन्हें दो कविताएं जुवानी सुनाई। उन्होंने मुझे कौमी एकता कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया। ये सम्मेलन ढालपुर कुल्लू में हुआ तथा मैंने दो दिन में ही कौमी एकता पर कविता लिख डाली तथा लगभग 500 व्यक्तियों के समक्ष कविता पाठ किया। बहुत वाह वाह हुई। उसके बाद मेरा हौसला बुलंद हो गया तथा मैं निरंतर कविता रचने लगी। आज मैं एक कवित्री तथा तटस्थ समीक्षिका के रूप में सम्मान पा चुकी हूँ। यह सम्मान मुझे 13 अगस्त सन 2016 में साहित्य एवं कला परिषद कुल्लू तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग व आर्थर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल के संयुक्त तत्वावधान में प्राप्त हुआ। मैंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन व साहित्यिक गतिविधियों पर शोध पत्र भी पढ़ा। ये सभी सम्मान व प्रसिद्धि मुझे श्री माँ देवी तीर्थ के अधिष्ठाता श्री महाराज जी की कृपा से ही प्राप्त हुई है। इस अंक में मैं अपना पहला भजन लिख रही हूँ तथा समेस में पर बाकी भजन व कविताएं भी भेजी जाएंगी। ये भजन है, मैं तो वैसे पढ़ देती हूँ। जहाँ ब्यासा तट पर महादेवी ने डाला अपना डेरा, वो महातीर्थ स्वामी तेरा, वो महातीर्थ स्वामी तेरा। जहाँ साए प्राता देवी देवता करते हैं नित फेरा, वो महातीर्थ स्वामी तेरा। सन 64 के वर्ष पर महासंत आए, महासंत एक आए, नाम उन्होंने नहीं बताया, सेवक दास कहलाए, स्वामी सेवक दास कहलाए। अपने तेजो बल से उन्होंने माँ को बनाया, वो महान तीर्थ स्वामी तेरा, वो महान तीर्थ स्वामी तेरा। जहाँ साए प्राता देवी देवता कहते हैं नित तेरा, वो महान तीर्थ स्वामी तेरा। जहाँ बिहड़ बंद था घोर अंधेरा, हिंसक पशु हुई थे भारी, उस बिहड़ बन में महाराज ने माँ की शक्ति उतारी। उस महाशक्ति के शुभ आशीष से रात का किया सवेरा, वो महातीर्थ स्वामी तेरा, वो महातीर्थ स्वामी तेरा। जहाँ साए प्राता देवी देवता कहते हैं नित फेरा, जहाँ श्री माँ के शुभ चरण पड़े, वहाँ माँ अवतारी, वहाँ महालक्ष्मी अवतारी। जहाँ नारी को सम्मान मिला, माँ कहलाई हर नारी, जिन चरण कमल की पावन रज पर झुके ये मस्तक मेरा, वो चरण कमल स्वामी तेरा, वो महातीर्थ स्वामी तेरा, वो महातीर्थ स्वामी तेरा। जहाँ साए प्राता देवी देवता करते हैं नित फेरा, वो महातीर्थ स्वामी तेरा। मैंने भजन तो बहुत बड़ा लिखा है, केवल 3 अंक ही मैं यहाँ दे पा रही हूँ। एक भजन तो प्रभु मन में बसो तुम आन जी, फिल्म वैष्णो देवी के बाबा में अनुराधा पौंडवाल जी द्वारा गाया गया है। उन्होंने इस विषय पर कहा है कि मेरा मन करता है, मतलब उनका मन करता है कि मैं बार बार इस भजन को गाती रहूं। एक बार ओके होने पर उन्होंने दूसरी बार भी इस भजन को गाया था। बहुत प्रसन्नता होती है कि माँ भगवती की कृपा व श्री महाराज जी तथा श्री माँ जी की कृपा दिन रात मुझ पर बरसती रहती है। वे सुख व दुख दोनों में साथ रहती हैं। कुछ अनुभवों की चर्चा मैं फिर आपके सामने करती रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ इंदु शर्मा। भक्तजनों, इस प्रकार आप सब भक्तों ने कुछ न कुछ अपने अनुभव आनंद में हो कैसे भी हूँ लिखने का प्रयत्न किया है। हिंदू कहती है कि एक बार मैं चीन महाराज जी के साथ हरिद्वार भी गई थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। स्वामी जी ने उस वक्त हरिद्वार में गंगा जी के तट पर 5 दिन रहकर भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती तथा गंगा माँ की पूजा की थी। इस प्रकार और भी बहुत से मेरे जीवन में ऐसे संस्मरण है। एक बार मैं श्री मां जी के साथ श्री गंगा गई। 4 दिन हमें लगे, 2 दिन जाने को 2 दिन आने को। हम रामायण साथ ले गए थे और उसमें हमारे साथ एक अमेरिकन चाइनीज लड़की वेदा भी थी। जब मैं रामायण पढ़ती सुबह शाम रास्ते में कहीं जहाँ नृत्य सम्भ बैठ करके, तो मेरा बड़े ध्यान से सुनती थी। और एक जर्मनी युवक था हिमेल, स्वामी जी का भक्त, वो भी कहता था हिंदू कहीं आप फिर से पढ़ो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारा सनातन धर्म और इसके ग्रंथ स्पेशली श्री रामचरित तो गाने और सुनने में बहुत ही आनंद प्रदान करता है। वो इन शब्दों